authentic taste of India in one bite with Vadilal Street Style Grilled Sandwiches. Available in lip-smacking flavors like Jungli Paneer, Bombay Club, Cheese Corn Capsicum, Cheese Chutney and many more. Grab your Vadilal Street Style Grilled Sandwich today.
आप सुन रहे हैं मिर्ची ओरिजिनल्स पर स्टोरी ऑल सिने स्टार सैलून का एपिसोड नंबर 7 सिने स्टार का भूत पार्ट 4। भोलू और नौबत चचा के हिसाब से ऑल सिने स्टार सैलून में एक भूत है, जबकि छुट्टन के हिसाब से भूत उन दोनों के मन का वहम है। भोलू और नौबत चचा छुट्टन को बिन बताए जब बाबा हकीम बंगाली के पास जाते हैं और ताबीज के बदले में 2100 रुपए देके आते हैं, तो छुट्टन को दोनों पर बहुत गुस्सा आता है। छुट्टन दोनों को समझाने के साथ ही सैलून में भूत है या नहीं इसको परखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेता है। भोलू और नौबत चचा के हिसाब से भूत सिर्फ रात को सैलून में बंद करते टाइम ही एक्टिव होता था, इसलिए ऐसे में सैलून खोलने की जिम्मेदारी भोलू की और सैलून को बंद करने की जिम्मेदारी खुद छुट्टन की हो गई थी। छुट्टन ने सैलून में कोई भूत नहीं है ये साबित करने के लिए भोलू और नौबत चचा से 2 दिन मांगे थे। आज से सैलून बंद करने का काम छुट्टन का ही था। आज जब सैलून बंद करने के लिए लगभग आधा घंटा बाकी रह गया था, तब छुट्टन ने भोलू और नौबत चचा के ना नुकुर करने के बावजूद दोनों को अपने अपने घर भेज दिया था। छुट्टन सैलून में बैठे बैठे डायरी में दिन भर का हिसाब किताब कर रहा था। दरअसल हिसाब किताब तो एक बहाना था, छुट्टन चाहता था वो सब कुछ खुद एक्सपीरियंस करना जो भोलू और नौबत चचा ने बताया था। कुछ ही देर के इंतजार में सैलून से की आवाज आनी शुरू हो जाती है। छुट्टन समझ जाता है कि ये वही आवाज है जिसके बारे में भोलू और नौबत चचा बात कर रहे थे, लेकिन छुट्टन उन अजीब आवाजों से घबराता नहीं है। भोलू और नौबत चचा के हिसाब से टीवी भी कुछ देर अपने आप चलते चलते खराब हो जाया करती थी, इसलिए उन अजीब आवाजों के बीच छुट्टन ने टीवी का स्विच ऑन किया। टीवी ऑन करने के साथ ही विजुअल्स थोड़े टेढ़े मेढ़े चल रहे थे। आवाज और डायलॉग्स को सुनकर छुट्टन समझ गया था कि चैनल पर गोविंदा की 90s की कोई मूवी चल रही थी। छुट्टन थोड़ी देर ध्यान से डायलॉग्स को सुनता है और मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि वो डायलॉग्स फिल्म दूल्हे राजा के थे, जहां गोविंदा और कादर खान के बीच होटल और ढाबे को लेकर आपसी नोकझोंक चल रही थी। छुट्टन अपने आसपास देखता है और किसी को सैलून में न पाकर सोचने लगता है कि हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब भी छुट्टन के पास लोगों को अपने बॉलीवुड नॉलेज से इंप्रेस करने का मौका होता है, सैलून में कोई नहीं होता। छुट्टन थोड़ी देर और अपने सैलून में रुकता है और इधर उधर इंस्पेक्शन करने के बाद अपना सैलून बंद कर देता है। अगली सुबह भोलू और नौबत चचा दोनों छुट्टन से पिछली रात के बारे में पूछते हैं, तो छुट्टन हंसते हंसते दोनों से कहता है, हाँ भूत तो है, लेकिन मुझे 1 दिन का समय और चाहिए। आप दोनों कल उन बाबा हकीम बंगाली को बुला के लेके आना, अपन कल ही वो भूत भगाने वाली पूजा करवाएंगे। ऐसे में भोलू और छुट्टन बड़े कंफ्यूज हैं, क्योंकि यहाँ छुट्टन उन दोनों की सैलून में भूत होने वाली बात भी मान रहा है और उन दोनों पर ऐसे हंस भी रहा है जैसे दोनों आले दर्जे के बेवकूफ हों। भोलू और नौबत चचा फोन करके भूत विनाशक अनुष्ठान के लिए बाबा हकीम बंगाली की कल की डेट बुक कर देते हैं। अगले दिन अनुष्ठान का दिन था, इसलिए आज सैलून की छुट्टी थी। भोलू और नौबत चचा दौड़ दौड़ कर सुबह से ही रात में होने वाली पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। उन्होंने सैलून में जगह बनाने के लिए चेयर्स, सोफे और फर्नीचर्स को साइट कर दिया है और सैलून का सारा कचरा साफ कर सैलून को एकदम चकाचक बना दिया है। शाम ढलने के साथ ही बाबा हकीम भी तांत्रिक के लिबास में सैलून पहुंच जाते हैं और अनुष्ठान के लिए सैलून में चौक लगाने की तैयारी करते हैं, लेकिन दोपहर से कहीं गया छुट्टन अभी तक वापस नहीं आया है। कुछ ही देर में अनुष्ठान शुरू होने वाला है, इसलिए भोलू और नौबत चचा दोनों छुट्टन के आने की फिक्र करने लगते हैं। बाबा हकीम अपने झोले से बारी बारी नींबू मिर्ची और एक खोपड़ी निकालते हैं। ये वही खोपड़ी थी जिसे देखकर भोलू डर गया था। बाबा हकीम साहब उस खोपड़ी को चौक के बिल्कुल बीचों बीच रख देते हैं। अनुष्ठान की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और कुछ ही देर में अनुष्ठान शुरू किया जाना था। लेकिन छुट्टन का अभी तक कुछ पता नहीं था। जब अनुष्ठान के तय समय से बिल्कुल 5 मिनट बचे थे, तभी छुट्टन सैलून के अंदर आता है और बाबा हकीम बंगाली और सारी तैयारियों को देखकर जोर से ठहाक लगाकर हंसता है। बाबा समेत सारे लोग छुट्टन को देखने लगते हैं। छुट्टन हंसने के बाद सीधा बाबा से कहता है, बाबा जी बंद करो ये ढोंग, कोई भूत भूत नहीं है यहाँ।
ये महाशय कौन है?
हकीम साहब नौबत चचा की ओर देखकर पूछते हैं।
जी यही छुट्टन भैया है, ये ऑल सिने स्टार सैलून इन्हीं का है।
नौबत चचा कुछ बताते इससे पहले ही पीछे से भोलू बोल पड़ता है,
आप तंत्र विद्या जानते हैं छुट्टन भैया? हमारी विद्या तो कह रही है कि यहाँ जरूर कोई रूहानी ताकत मौजूद है।
हकीम साहब छुट्टन की ओर देखकर कहते हैं, अच्छा और अगर मैं साबित कर दूं कि यहाँ कोई भूत नहीं है तो? छुट्टन बाबा हकीम से पूछता है। छुट्टन की बात पर हकीम साहब हिचकिचा जाते हैं और कुछ देर के लिए सोचने की अवस्था में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सोच विचार कर हकीम साहब कहते हैं,
ठीक है तो तुम जो कहो, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर तुम साबित नहीं कर पाए कि सैलून में भूत नहीं है तो तुम्हें मुझे 21,000 की जगह पूरे 1,00,000 रुपए देने होंगे। बोलो मंजूर है?
मुझे मंजूर है, छुट्टन बिना हिचकिचाए कहता है।
छुट्टन भैया नहीं,
पीछे से एक बार फिर भोलू कहता है, और अगर मैं सही हुआ तो आपने अभी तक जितना पैसा भोलू और नौबत चाचा से ऐठा है, मेरा मतलब लिया है, आप वो वापस कर देंगे, बोलिए मंजूर है? छुट्टन के आत्मविश्वास को देखकर पहले तो हकीम साहब हिचकिचा जाते हैं और अपने आसपास देखने लगते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अपने ईगो के आवेश में आकर कहते हैं,
ठीक है हमें मंजूर है।
हकीम साहब के हाँ बोलने के साथ ही छुट्टन अपने फॉर्म में आ जाता है। तो चलिए मैं बुलाता हूँ उन आवाजों को जिन्हें आप अभी तक भूत समझ रहे थे। नौबत चचा अपने दुकान की चाबी दीजिए जरा। नौबत चचा अपनी शर्ट की जेब से चाबी निकालते हैं और छुट्टन उनके हाथ से चाबी लेकर सभी को सैलून में ही रहने को कहता है। तब तक बाबा फिर अपने अनुष्ठान की तैयारी करने लगते हैं और हवन कुंड में आग जला देते हैं। तब तक छुट्टन भी सैलून में वापस आ जाता है और आकर कहता है, इंतजार करिए बस आती होगी आपकी भूत की आवाज।
हाँ क्योंकि हमने उस रूह को बुलाने और सम्मोहित करने के लिए हवन में आहुति दे दी है।
हकीम साहब हवन कुंड में हवन सामग्री डालते हुए कहते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ ही देर में आवाज शुरू हो जाती है। आवाज के साथ ही भोलू और नौबत चचा सहम जाते हैं। बाबा जी आपकी विद्या में क्या मतलब है इस आवाज का? छुट्टन बाबा से पूछता है।
यही कि ये रूह हमसे कुछ कह रही है,
हकीम साहब कहते हैं। छुट्टन मुस्कुराता हुआ अलमारी के पास जाता है और अलमारी के पीछे हाथ डालकर पाइप निकालकर कहता है, लेकिन एसी कब से हमसे कुछ कहने लगी बाबा? छुट्टन नौबत चचा की ओर वो पाइप दिखाकर कहता है, चचा ये आपकी दुकान के एसी का पाइप है जो हमारे सैलून से होकर गया है। जब रात को आप अपनी दुकान बंद करने के टाइम एसी को बंद करते हो तो गैस इस पाइप से लीक करती है, जिससे ये अजीब सी आवाज आती है जिसे आप दोनों भूत समझ बैठे थे।
और छुट्टन भैया हमारे ये सैलून का टीवी,
भोलू बड़ी नादानी से कहता है, टीवी चालू करो भोलू, टीवी की वायरिंग खराब हो गई थी, आज ही नई वायर लगवाई है, देखो जरा ठीक से चल रही है ना। टीवी ऑन होती है और पहली की तरह टीवी पर बिल्कुल साफ चित्र आ रहे होते हैं।
और वो उस दिन लाइट गुल हो गई थी तब?
नौबत चचा पूछते हैं। चचा पिछले 3 दिन से स्पार्क हो रहा था खंबे में, डीपी जल गई थी उस दिन, मैंने खुद कंप्लेंट की थी म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस में, छुट्टन समझाता है।
हाँ इसका मतलब सैलून में परमजीत सिंह का भूत नहीं है?
नौबत चचा बड़ी राहत की सांस लेते हुए कहते हैं। चचा परमजीत सिंह तो बिल्कुल स्वस्थ है और अपने नए फ्लैट में बड़े मजे से रह रहा है, आज दोपहर को मैं उनसे ही मिलने गया था। आपको शायद पता नहीं है लेकिन कंस्ट्रक्शन ऑफिस के सामने उस दिन आग जरूर लगी थी, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के पुतले की थी, यानी उस दिन एक पुतले ने आत्मदाह किया था और उस पुतले को आग परमजीत सिंह ने लगाई थी।
सबको लगा कि पैसे डूबने के कारण परमजीत सिंह ने खुद को आग लगा ली। बाबा जी आपको भी और कुछ एक्सप्लेन करूं या? अब बाबा हकीम बंगाली चुपचाप सर झुकाए बैठे थे। वे समझ गए थे कि यहां उनकी दाल अब और नहीं गलेगी, इसलिए वो कुछ देर पहले अपने झोले से निकाले सारे सामान को फिर से वापस झोले में डालने लगते हैं, जबकि भोलू और नौबत चाचा दोनों अपनी बेवकूफी पर शर्मिंदा होकर सर झुकाए खड़े थे।